ओम शांति। सभी को अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर तो अटेंशन होगा ही। आज बाबा की मुरली में भी कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समय फिक्स करो। किस चीज का? किस चीज का बोलो? है संपूर्ण बनने का। और किस चीज का? आप समान बनने का। भारी काम है दोनों ही। थोड़ा हल्का बता दो। खुश रहने का। खुश तो उसके लिए टाइम फिक्स करना, थोड़ा अब से ही रहना है वो तो। और बताओ। अच्छा है तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया। हम सब जानते हैं कोई भी कार्य का टाइम फिक्स होने से ही स्पीड बढ़ती है काम की। हम अपने जीवन के कुछ लक्ष्य बनाएं और उनके लिए टाइम फिक्स करें। हम और सब चीजों की चर्चा तो कर लें, लेकिन मुख्य बात कौन सी टाइम फिक्स करने के लिए? योग के। इतने दिन में हमें अपना योग का चार्ट इतने तक कर देना है, क्योंकि अगर हम ये टाइम फिक्स नहीं करते, हमारा योग का पुरुषार्थ तेज नहीं होता, तो बाकी सब पुरुषार्थ कैसे हो जाते हैं? मेहनत वाले, निराशा देने वाले। और अगर हमारा योग का पुरुषार्थ सुंदर है, तो बाकी सभी तरह के पुरुषार्थ सरल हो जाएंगे, सहज हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मुख्य ध्यान हमारे मुख्य सब्जेक्ट पर हमें देना है, योग। जिनका योग 4 घंटे से कम है, वो विचार करें जरा अच्छी तरह। 4 घंटे से कम योग में जीवन में बहुत अच्छी सफलता नहीं होगी। सेवाओं का चाहे फील्ड हो, चाहे संस्कार बदलना, चाहे समस्याओं की समाप्ति, कोई भी, बिना 4 घंटे योग के अच्छे अनुभव नहीं होंगे। एक अनुभव मुझे आप सबको सुनाना है, बहुत अच्छा है। आज की बाबा की मुरली में अनुभवों की अथॉरिटी बनो, याद है ना? हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक अनुभव है वो भी, और वो भी अथॉरिटी बनाने वाला है। टेस्ट सेंटर में एक बहन को अपना मकान बनाना था, नजदीक की बात है, तो उनके जो बड़े थे उन्होंने तो कोई सहयोग दिया नहीं। जगह बड़ी थी और बजट बहुत बड़ा था, तो इसने एक बहुत अच्छी विधि अपनाई। बहुत सारे कुमार भी सेंटर के पास रहते हैं। रोज सवेरे 3:30 बजे उठकर बाबा को भोग लगाना है। योग तो सभी लगाते हैं। इन्होंने भगवान को राजी करने का प्लान बनाया। भोग खा के तो भगवान राजी होता है ना, भोजन खा के मनुष्य भी राजी होता है, और प्यार और भावनाओं से बनाया हुआ भोग भगवान को भी प्रसन्न करता है। और शुरू हुआ, सफलता शुरू हुई। बहुत अच्छा सेंटर सहज भाव से बन गया। काफी बड़ा बजट, मैं वो बताऊंगा नहीं, काफी अच्छा बड़ा समझ गए ना। उसके पास तो कुछ था नहीं इतना। ये भी एक अनुभव हुआ, भोग लगाओ, समस्याएं मिटाओ। अनुभव करेंगे, भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। खुद भी लगा सकते हैं भोग, कुमार भी लगा सकते हैं। शास्त्रों में दिखाया ना, गज को ग्राह ने पकड़ लिया, खींचने लगा वो उसे पानी में, उसने क्या किया? एक फूल। अब सागर में फूल कहाँ से आए, ये तो सोचने की बात है, पर हाथी को फूल मिल गया एक बहुत अच्छा वहां, और उसने अर्पित कर दिया भगवान को, और प्रभु जी प्रसन्न हो गए। तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, समर्पण भाव, बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत सुंदर प्यार, ये भगवान को भी बांधता है। तो हम सभी इन चीजों को जीवन में बहुत बढ़ाएंगे। भोग लगाना बहुत सुंदर बात है। अब पहली चर्चा हम करेंगे, आज बाबा ने कहा निश्चय और विजय। हर जगह विजय, विजय हमारी मंजिल है और रास्ता कौन सा है? स्मृति स्वरूप, भिन्न भिन्न स्मृतियों का अभ्यास करना ये रास्ता है जो हमें फाइनल मंजिल पर पहुंचाएगा, वो मंजिल हमारी विजय है। हर जगह विजय, माया पर भी विजय, कार्यों में भी विजय, जो हम करना चाहते हैं पुरुषार्थ उसमें हमारी विजय, जो हम प्लान बनाते हैं उसमें विजय, नहीं तो प्लान बनते हैं और विजय नहीं होती तो प्लान छूट जाते हैं, निराशा रहती है। तो स्मृतियां हमारा मार्ग तय करती हैं और हम विजय की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हमें कुछ स्मृतियां अपने पास रखनी है। विजय के लिए बाबा ने आज एक और बहुत अच्छी बात कही, टोटल पुरुषार्थ के लिए, कि जो पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, ये देखिए सुनाने के लिए, रिपीट करने के लिए तो बहुत ही सिंपल बात है, पर अगर ये हमारी डीप फीलिंग में आ जाए तो ये बात हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा तुम जो कुछ कर रहे हो वो कुछ नहीं, कल्प पहले भी तुमने किया है, केवल रिपीट कर रहे हो, अनेक बार किया है, एक कल्प में नहीं, असंख्य बार तुमने किया है, केवल रिपीट करना है। ये स्मृति हमारा मार्ग सरल कर देती है। इस फीलिंग को सभी बढ़ाएंगे कि जो पुरुषार्थ हम अब कर रहे हैं, जिन चीजों को अब हम पाना चाहते हैं, कल्प कल्प हमने उनको पाया है, सरल है। कोई चीज हम बार बार कर चुके हों तो फिर हमें वो करना खेल लगता है। चिंतन करें आप इस पर, इसको करके देखें, ये एक बात कह देने से पूरी नहीं हो जाती, डीप फीलिंग की जरूरत है इसमें। जैसे हमने कोई काम आज ही 10 बार किया हो और अब 11वीं बार हमें करना हो तो हमें लगता भी नहीं कि हमें कुछ करना है, टेंशन तो उसकी होगी नहीं पर हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कुछ करना है। मान लो हमें चाय बनानी है, जाके यहाँ से माताओं को लगता है कि चाय बनानी बड़ा भारी काम है, बार बार करते हैं ना। ऐसे ही पुरुषार्थ, माया के किसी भी स्वरूप को जीतना, सूक्ष्म से सूक्ष्म माया को जीतना, ये बिल्कुल सहज हो जाएगा कल्प पहले की विजय की स्मृति से। विजय हमारी होगी ही, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस बार का स्वमान हम रखेंगे, मैं विजयी रत्न हूँ। इसको डीप फीलिंग में लाने से हमें क्या फायदे होंगे कि विजय की शक्ति काम करना प्रारंभ करेगी। शक्तियां तो हमारे पास सारी हैं। आज बाबा ने कहा सर्व शक्तिवान का वर्षा है शक्तियां, बाप का वर्षा है विजय। आज ये दो शब्द थे बहुत अच्छे। वर्षे में मिली हैं हमें शक्तियां। जैसे छोटा सा ही उदाहरण, शेर के बच्चे को वर्षे में क्या मिल जाता है? जो कुछ शेर में है वो वर्षे में ही मिल जाता है ना उसे, उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। बचपन से ही, अब 5-7-10 दिन का ही होगा तो शेर के सारे संस्कार उसमें दिखाई देंगे। हमें भी यदि ये डीप फीलिंग हो जाए हम किसके बच्चे हैं, तो उसके सारे संस्कार जीवन में आना सरल हो जाएगा। तो स्मृतियों पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। डीप से डीप स्मृतियों की ओर हम चलें, और ये बहुत अच्छी स्मृति है, इस माया को हमने कितनी बार जीता है, बहनें बताएंगी कितनी बार जीता है, माताओं ने अनगिनत बार जीता है। इस स्मृति को हम बढ़ाएंगे, कितनी बार हम देवकुल में रहे हैं, एक तो 2500 साल, और 2500 साल भी असंख्य बार, इस फीलिंग को हम बढ़ाएंगे तो सब कुछ खेल जैसा लगेगा, जैसे बाबा ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता है कि ये बच्चे घूम रहे हैं आधा कल्प स्वर्ग में। उसके लिए कल होता है, कल मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, आज तुम नरक में आ गए, फिर कल स्वर्ग में भेज देता हूँ। स्मृति स्वरूप होने का सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब है अनुभवों की अथॉरिटी। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है जीवन के लिए, हर चीज में अनुभव अथॉरिटी होता है ना, स्थूल में भी, खाने पीने में भी, बीमारियों में भी। किसी को अनुभव हो भाई ये चीज खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो एक बड़ी चीज होती है ना अथॉरिटी, तो उस बीमारी से भी डर नहीं लगता, आएगी तो हम ये यूज करेंगे। तो हम 5 पॉइंट्स निकालेंगे जिनकी हमें अथॉरिटी बनना है, अनुभवों की अथॉरिटी। अथॉरिटी बनती है जब उन चीजों का बार बार अनुभव होता है, तो वो चीज हमारे लिए अथॉरिटी बन जाती है। आप बोलेंगे अब इसमें चिंतन करें 5 बातें जो हमारी अथॉरिटी में आ जाएं, उसमें से एक बात लेंगे योग की, दूसरी लेंगे प्योरिटी की, तीसरी लेंगे स्वमान की, बोलो, और धार प्राप्तियों में 2 ले लें, एक संतुष्टता की ले लें, एक सेवाओं में सफलता का आधार निमित्त और निर्माण भाव। आज बाबा संगठन की शक्ति की बात कर रहे थे, सेवाओं में सफलता का आधार निमित्त निर्माण और निर्मल, एक इसकी अथॉरिटी। योग की अथॉरिटी में क्या कहेंगे, भाई इस व्यक्ति के पास योग के अनुभवों की अथॉरिटी है, कैसे बोलेंगे इसे, योग के प्रयोग से और योग के भिन्न भिन्न अभ्यासों से, एक्सरसाइज से, योग की अनुभवों की अथॉरिटी माना, योग लगाने में कठिनाई नहीं, जब चाहें और जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्वयं को स्थित कर सकें। सवेरे रोज प्रभु मिलन हो जाता है, ये अनुभव योग के वाइब्रेशन से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, ये अनुभव योग के अनुभव से हमारी टेंशन समाप्त हो जाती है, ये अनुभव सहज योग, जब चाहें योग लग जाता है, ये अनुभव कामकाज में ज्यादा व्यस्तता में योग सहज हो जाता है, ये अनुभव। तो योग को योग की अथॉरिटी बनने के लिए बार बार उसके अनुभव होते रहे, अच्छे से अच्छे अनुभव। आज बाबा ने अष्ट और इष्ट के लिए भी कुछ बात कही थी, याद करो, होपलेस केस में होप भर दें, और थी अच्छी बात, सबसे जो सुंदर स्थिति है किसी भी ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले की। योगी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? थी लास्ट में याद करो। ऐसी आत्माएं ही योगयुक्त होती हैं, अस्त बनती हैं, सबकी इष्ट बन जाती हैं। अपकारी पर उपकार, ग्लानी करे कोई उसे भी अपना समझ ले। अब ये जो अपोजिट चीज है जिनमें मनुष्य की स्थिति बिगड़ती है, कोई अपमान करे उसको स्वमान में बदल दे, ग्लानी को महिमा में बदल दे, ये दोनों चीजें सबसे बड़ी चीज होती है जो मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ती है। कौन कितना है, कितने कितना योग किया है, किसने अपने अंदर ज्ञान की शक्ति भरी है, वो इन चीजों से समझ में आता है ना। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सुख दुख, सब में समान हो जाना। जो ग्लानी कर रहा है उससे नफरत न हो, बहुत बड़ी चीज है। ग्लानी करने वाले से हर व्यक्ति दूर रहता है, भाई इनसे दूर ही ठीक है, लेकिन किनारा नहीं। क्या हो जाए? किनारा नहीं, उनकी भी उस स्थिति को ठीक कर लें अपने अच्छे वाइब्रेशन से। ये बहुत सुंदर स्थिति है जो लंबा समय योगयुक्त रहते हैं, जिन्हें अपने स्वमान के द्वारा, अपने योग अभ्यास के द्वारा बहुत ज्यादा सुख मिल जाता है, उन्हें दूसरे के द्वारा की गई निंदा अपमान भारी नहीं लगता। जो खाली हैं उन्हें दूसरों से कामना होती है, हमें लोग अप्रिशिएट करें, हमारी महिमा करें, हमें सम्मान दें। तो जहाँ कामना है वहाँ क्या हो जाता है? आत्मा कमजोर हो जाती है और सामना करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मान की कामना है तो अपमान में स्थिति बिगड़ेगी, महिमा की कामना है तो निंदा होने पर स्थिति बिगड़ेगी, सेवा ही छोड़ देंगे। छोड़ो इस सेवा को, यहाँ तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जो आत्माएं संतुष्ट हैं अपने पुरुषार्थ में, शक्तियों में, सुखों में, उनको ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये चीजें छोटी लगे। पांच लोग खड़े हैं, उसके बीच में कोई हमारी ग्लानी कर देता है, जोर जोर बोल के करता है ताकि पड़ोसी भी सुन लें, मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है। अधिकतर लोग यहाँ परेशान होते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ कहना था, अकेले बुला के कहते ना, सबके बीच में कह दिया। लेकिन सब क्या देखते हैं? सोचने की बात है, सब दोनों चीजें देखेंगे, उसका बोलना, उसका बोलने का तरीका, वो क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा है, और दूसरा क्या देखेंगे? हमारी स्थिति। अगर हमारी स्थिति उसके गलत बोलने के बाद बिगड़ती नहीं है तो लोग किसकी महिमा करेंगे और किसकी ग्लानी? सोच लें, हमारी महिमा होगी, बोलने वालों की ग्लानी होगी। और अगर हमारी स्थिति बिगड़ती है तो ये बात उल्टी हो जाएगी, हमारी ग्लानी, लोग कहेंगे उसने ठीक कहा, कुछ होगा जरूर। तो हमें इसके लिए अपने को भरपूर करना है, संपन्न। भरपूर, संपन्न का अर्थ है भरपूर, घड़ा पानी से भरपूर होता है तो छलकता नहीं। कोई भी चीज जब भरपूर होती है, संपन्न होती है, तो डामाडोल नहीं होती, स्थिति बिगड़ेगी नहीं। किस किस में संपन्न? ज्ञान में, ज्ञान के बल में, ज्ञान की बहुत अच्छी पॉइंट्स में एक बहुत अच्छी बात मैं आप सभी को याद दिलाऊं, सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस अनुभव की भी अथॉरिटी बन के देखेंगे। बाबा ने कहा जब बच्चों के पास समस्याएं आ जाती हैं तो बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, समस्याओं को हल करने में आत्मा इतनी उलझ जाती हैं कि उन्हें ये भी भूल जाता है हमारे साथ कौन है, हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास कितनी ईश्वरीय शक्तियां हैं, हमारे पास पुण्यों का बल भी है, हमारे दिन भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी भी है, ये सब बातें विस्मृत हो जाती हैं, तो वो समस्याएं और पावरफुल लगती हैं। समस्याएं पावरफुल होती नहीं, पर हम वीक पड़ जाते हैं तो समस्याएं हमें पावरफुल प्रतीत होती हैं। तो हम अथॉरिटी बने ज्ञान के बल की, हमें अथॉरिटी बनना है प्योरिटी की शक्ति की। एक छोटा सा सुंदर अनुभव मैं सुनाऊं। कोई एक माता लंबे समय से परेशान, उसने मुझे कल बात की और कहा कि मैं सफेद साड़ी पहन के सेंटर में जाती हूँ तो जब आती हूँ ना लड़के उल्टा सुल्टा बोलते हैं रास्ते में, नेचुरली फील होता है, क्या करूं। उसको परेशानी ये थी कि बाबा जो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर किसी को गलत फीलिंग हो तो वो भी तुम्हारा दोष है, कहते हैं ना बाबा, तो ये बात कईयों को बड़ी सेंसिटिव बना देती है। अब इसमें मैं तो वो परेशान थी कि मेरी प्योरिटी खराब है इसलिए लड़के मुझे उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, उन लड़कों पर कलयुग का पूरा प्रभाव है, वो पूरे कलयुगी हैं, वो तो बाबा को भी बोलते थे बहुत। बाबा जो संसार की सबसे पवित्र आत्मा है, जिसके चेहरे पर दिव्यता और तेज झलकता है, जिसको देखकर हम सब कैसे हो जाते हैं आप सब जानते हैं, संसार के बहुत लोग बाबा को बड़े गलत शब्द बोलते थे, हम उन्हें बोल भी नहीं सकते, इतने गलत थे वो। तो किसी के बोलने से हम अपनी स्थिति को नाप नहीं सकते, ये बात सुनते ही वो माता थोड़ी शांत हुई। जब मैंने कहा ना बाबा को बोलते थे, वो शांत हुई और आज फिर फोन किया क्लास में जाने के बाद कि आज भी लड़के मिले लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी। उसके घर 9 साल से उसने कोई घर बनाया है, 9 साल से उसको उस घर में प्रॉब्लम थी, आज उसने देखा उसका चित्त शांत होते ही उस घर में उसका मन लगने लगा। नहीं तो उसने पहला प्रश्न किया था कल कि इस घर में आते ही मुझे अशांति होती है, संकल्प उठते हैं भाग जाए यहाँ से कहीं। अब बड़ा घर लिया है, थोड़ा सा शहर के बाहर है, उसे एकदम छोड़ के कहाँ भागेंगे, नया मिले वो भी अच्छा हो ना हो। तो ये बहुत अच्छे अनुभवों की अथॉरिटी बनने की बात है। हमारी मन की स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपे ही, ये सब काम आपे ही होता है। हमारी प्योरिटी इस प्रकृति के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे भी आते आते भी कह रहे थे कि भाई सबको कहें कि बारिश का आह्वान करें, करेंगे, बारिश नहीं तो तरसा रही है सब जगह, अखबारों में भी आने लगा है, बारिश न हुई तो क्या होगा, कहीं भी शायद नहीं हो रही ना, कहीं भी नहीं हो रही ऑल इंडिया में, या कहीं बाढ़ आई हुई है, बाढ़ नहीं है ना, नहीं तो प्राय ऐसा होता था कहीं बाढ़ आ रही है तो इधर बारिश नहीं हो रही है। तो हम सभी 15 मिनट रोज जरा योग कर देंगे एक टाइम फिक्स करके, बोलो कौन सा टाइम करेंगे सभी। सब एक साथ करें ताकि, बोलो कल से शाम को, ठीक है, 7 बजे का टाइम रख लेते हैं, 7 से 15 मिनट हम किस किस तरह अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सीट है हमारी, सब सुनते ही हैं बाबा की बात कि इस सीट पर बैठे बिना कोई भी चीज हमारा ऑर्डर नहीं मानेगी, शक्तियां भी नहीं तो प्रकृति भी नहीं। तो ये तीन स्वमान बहुत अच्छी तरह याद करके इनकी गुड फीलिंग में आकर पहले हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। जैसे बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें हमें आ रही हैं, हमसे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति उनको ग्रहण कर रही है। मैं प्रकृति की मालिक हूँ, इस स्वमान के साथ प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। और लास्ट में संकल्प करेंगे कि अब मनुष्यों को बरसात की बहुत जरूरत है, खेती को बरसात की बहुत जरूरत है। हे प्रकृति, अब बरसात बरसाओ, अब पानी बरसाओ। संकल्प करेंगे, सब करेंगे बहुत विश्वास के साथ कि हमारे संकल्पों का इफेक्ट होगा, क्योंकि बारिश न होने के कारण भी कहीं पोल्यूशन, कहीं और कुछ, पेड़ों का कटना, बहुत सारी बातें लोग सुनाते हैं, पर पेड़ तो कटे हुए होने के बाद भी बाढ़ आ जाती है। सूक्ष्म रूप से मनुष्य के संकल्प इन सभी आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम सभी ये भी करेंगे और अपनी प्योरिटी के वाइब्रेशन से क्या क्या होता है इसको देखेंगे। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जहाँ पवित्र आत्माएं होंगी वहाँ प्रकृति भी शांत हो जाएगी। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ बहुत सारी आत्माएं हमारे वाइब्रेशन से रोग मुक्त भी हो जाएंगी, सफल भी बहुत होंगी। ये सब अनुभव हमें करते चलना है। वो कुमार कुमारियां जिनको परिवार में शादियों के लिए माँ बाप तंग करते हैं, वो इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। आज ये कुमार मिला मुझे, ऊपर आया सेवा में, तो उसकी समस्या थी बहुत बड़ी है शादी की, माँ बाप बिल्कुल पीछे लगे हुए थे। उसे मैंने ये तीन अभ्यास सिखाए, मैं एक महान आत्मा हूँ, इष्ट देव हूँ, पवित्रता का देवता हूँ। ये तीन स्वमान अभ्यास करो, और मैंने कहा योग भी कर लेना। तो आज मुझे सुना रहा था, दो शाम कोई लिफ्ट में चलते हुए मिल गया मुझे वो, तो कहा मेरे माँ बाप बिल्कुल शांत हो गए हैं। ये बात मुश्किल से 20-25 दिन पहले से की होगी उसने, कहा साहब शांत हो गए हैं। तो हम इस बात को, इस सीक्रेट को समझते हुए कि जैसी स्मृति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप दूसरों को दिखाई देता है, इसको जानते हुए अच्छी स्मृतियों में रहेंगे। हम सब जानते हैं कोई व्यक्ति परेशान हो तो उसके चेहरे से उसकी परेशानी दिखती है या नहीं। 10 लोग बोलेंगे क्या बात है आज परेशान हो। कोई व्यक्ति बहुत खुश हो उसकी खुशी भी चेहरे से दिखती है। कोई व्यक्ति टेंशन में हो, उदासी में हो, ये निगेटिव बातें सब आप सोच लो। कोई दुख से पीड़ित हो 10 लोग बोलेंगे उसे क्या बात है आज। ऐसे ही हमारी महान स्मृतियां भी हमारे चेहरे से झलकती हैं, उसका भी गहरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इसलिए अनेक समस्याओं का हल स्मृति स्वरूप होना ही है। हम अगर बहुत डीपली अभ्यास करते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे समाज के लोग, फ्रेंड सर्किल हमें महान ही समझने लगते हैं। हम ये सोचते हैं, बाबा तो कहता है महान हो, पता नहीं हूँ या नहीं, अभी तो नहीं हूँ, अभी तो ये कमजोरी है, तो दूसरों को भी लगता है वही ये पता नहीं महान है या नहीं। हमारे संकल्प उनसे टकराकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे संकल्प दूसरों के मन में भी उभरते हैं, जो हम सोच रहे थे वही दूसरों ने सोचा, वही वापस हमारे पास आते गए, ये सर्किल तेज चलता रहेगा। तो दूसरा स्वमान इस बार का हम लेंगे, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। और पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल के समय अपने देव स्वरूप और फरिश्ते स्वरूप को विशेष अभ्यास में लाएंगे। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मुझे दो बातें और आपको कहनी है, गुलजार दादी ने कही भट्टी में, बहुत सुंदर है, मैं सोचता हूँ सभी के लिए है, सभी उसके अभ्यास करेंगे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी गुड फीलिंग में रहो, मेरे दिल में बाबा है, बाबा को दिल में बैठा लो। इसको बार बार याद करना पड़ेगा हमें, जैसे भक्ति में लोग कहते हैं हरेक के दिल में भगवान बैठा है, और हम उन्हें तर्क देते हैं कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ भला भगवान कैसे बैठेगा। तो ऐसा समझ लें, हमारे दिल में बाबा बैठा है, हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं तो हम बाबा के ऊपर गंदगी डाल रहे हैं, तो बाबा ठहरेगा या भाग जाएगा? दिल को छोड़ के भाग जाएगा ना। जब भी व्यर्थ संकल्प आए तो ये फीलिंग करें कि दिल में बाबा बैठा है, वो तो निकल जाएगा फट से, तो गंदगी डाल दी हमने। हम किसी के ऊपर गंदगी डाल दें, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया हो, तुरंत भाग जाएगा। बहुत अच्छी पॉइंट है, इसके अभ्यास से भी हमें व्यर्थ को समाप्त करने में मदद मिलेगी। दूसरी बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भगवान हमें देखकर प्रसन्न हो। जैसे कोई टीचर लौकिक में भी अपने उस स्टूडेंट को देखकर बहुत खुश होता है जो बहुत योग्य है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है। कोई गुरु अपने उस शिष्य को देखकर बहुत आनंदित होता है जो उसका योग्य है और उसकी गलती संभालने के लायक है, आज्ञाकारी है। हम भी ऐसा करें कि बाबा हमें देखकर प्रसन्न हो। सोच लें अपना अपना स्वरूप, कि मैं कौन सा अपना स्वरूप बनाऊं जिसे देखकर बाबा प्रसन्न हो, दिल खुश हो जाए उसका भी, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ, वो भी गीत गाने लगे। गाते हैं ना बाबा, मुरलियों में कहते हैं ये बात। हमें पर्सनल फीलिंग होने लगे कि बाबा हमारी स्थिति को देखकर भी बहुत प्रसन्न हो रहा है, तो हम अनुभवों की अथॉरिटी बनेंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अमृत वेले योग की अथॉरिटी, अमृत वेले हमारा योग सुंदर होता है तो सारा दिन निर्विघ्न बीतता है, ये अथॉरिटी। हम अगर श्रेष्ठ संकल्पों में रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त होते हैं, तो हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, ये अथॉरिटी। निगेटिव अथॉरिटी भी होती है जो हमें सावधान करती हैं, व्यर्थ सोचते ही विघ्न आने लगे तो हम व्यर्थ से सावधान हो जाएंगे ना। तो ये सब हमें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाना है। सभी को याद ही होगा, काम याद दिला दूं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है सबको, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसके सुंदर अनुभव करने हैं, ये फीलिंग होती चले मैं मालिक हूँ, इस देह का मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, संस्कार और कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, अच्छी अनुभूति होती चले। तीसरा ये स्वमान और प्रैक्टिस, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे भ्रकुटि सिंहासन पर और इस फीलिंग को बढ़ाएंगे, मैं मालिक हूँ। मन को भी बार बार आप ये संकल्प देंगे, हे मन मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तो मन आदेश का पालन करने लगेगा, हे बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तो बुद्धि हमारे आदेश का पालन करने लगेगी। अब एक छोटा सा प्रयोग करके देखना, आपको 2 घंटे के बाद कुछ काम करना है पर आप भूल जाते हैं, आपको ये डर है मैं भूल न जाऊं, लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी बुद्धि को ये आदेश दे देना, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, हे बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, 2 घंटे के बाद मुझे ये काम याद दिला देना और परिणाम देखना। ठीक टाइम पर बुद्धि जैसे अलार्म की तरह काम करेगी, घंटी बजेगी और हमें वो चीज याद आएगी। धीरे धीरे हमें अपने अनुभवों को बढ़ाना है कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, मन बुद्धि के मालिक हैं, तो बुद्धि को भिन्न भिन्न आदेश देते हुए उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है ये देखना। अपनी बुद्धि को एक आदेश दे दें, कुछ दिन दे दें कि तू दिव्य बुद्धि है, इसलिए सभी के लिए अच्छी भावनाओं को ही अपने में धारण करना, कोई भी बुरी भावना आ जाए उसे रिजेक्ट कर देना, मुझे सावधान कर देना ये गलत है। अपनी बुद्धि को हम आदेश दे सकते हैं, मेरी बुद्धि जहाँ भी मेरे से सूक्ष्म गलती हो तुरंत मुझे रियलाइज करा देना ये गलत, तो बहुत अच्छी फीलिंग होने लगेगी, क्योंकि अधिक लोगों को इस संसार में अपनी गलतियों की रियलाइजेशन नहीं होती, वो सोचते हम तो ठीक है दूसरे गलत हैं, लेकिन उससे हमारी उन्नति तो नहीं होगी, तो इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना है। व्यर्थ से मुक्त होना, 6 मास 3 बीत गए, व्यर्थ से मुक्त होना, किस किस को प्रोग्रेस अनुभव हो रही है हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठा दो जरा, बाबा देख ले, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ग्रुप के लगभग सभी भाई बहने अच्छी प्रोग्रेस में हैं, सभी अटेंशन दें इस पर। व्यर्थ आपे ही चलता है या कुछ व्यर्थ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चलाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चलाते हैं। ज्यादा सोचने की आदत व्यर्थ को बहुत बढ़ावा देती, हर जगह ज्यादा सोचना, निगेटिव होने की आदत व्यर्थ को बहुत बढ़ावा देती है। अपने को पॉजिटिव करेंगे, एटीट्यूड्स को भी पॉजिटिव करेंगे, दृष्टि को भी पॉजिटिव, सोचने के तरीके को भी पॉजिटिव, जैसे आज बाबा की मुरली में था, अपमान को भी महिमा में बदल दो, बहुत अच्छी चीज है ये। कोई हमारा अपमान करता है, हम उसे अपना मित्र मान लें कि ये अपमान करे, तब तो मुझे मान अपमान में समान रहने के लिए कुछ करना पड़े, कोई अपमान ही न करे तो मान अपमान में समान रहने के लिए पुरुषार्थ ही न हो, तो ये मेरा मित्र है। जो मुझे प्रेरित करता है कि तुम अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ कि किसी का अपमान तुम्हारे स्वमान को विस्मृत न करा दे, तो बहुत अच्छी बात याद आएगी। मैं एक बात सुनाता हूँ, सदा आपको याद होगी, इस मान सम्मान के लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे मनुष्यों से सम्मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। मैं ये सुंदर शब्द है ना, जो हमारे दिल को विशाल करते हैं, छोटी भावनाओं को समाप्त कर देते हैं, कामनाओं को नष्ट करा देते हैं। तो हम व्यर्थ से अपने को मुक्त करेंगे। 3 मास और हैं, बाबा आएंगे और जरूर बाबा इस होमवर्क की रिजल्ट लेंगे, और बाबा न ले तो रिजल्ट हमारे पास होगी ना। कोई कोई सोचते हैं बाबा तो पूछते नहीं है, बाबा पूछता है, उसे भूलता थोड़ा ही है। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की सबसे बड़ी प्राइज साथ साथ मिल जाती है ना। बाबा हम सभी को तैयार कर रहा है किसी महान कर्तव्यों के लिए, ये हमें भूलना नहीं है। और वो जो हमारे महान कर्तव्य हमारे सामने आएंगे, वो थोड़े बहुत पुरुषार्थ से संभव नहीं होंगे। सालों साल, लंबा काल शक्तियां जमा की होंगी, प्योरिटी का बल जमा किया होगा, साक्षी भाव की स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ कर ली होगी, तब विनाश काल में हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। नहीं तो बहुत आत्माएं विनाश काल में अपने को ही ठीक रखने में लगी रहेगी, अपने ही दुखों से इतनी दुखी हो जाएंगी कि संसार को भी कुछ देना है क्या ये भूल जाएगा। इसलिए लंबा काल साक्षी भाव, लंबा काल देने की भावना, लंबा काल वाइब्रेशन सकाश देने की प्रैक्टिस हमें विनाश काल में बहुत सफल करेगी। उस टाइम की सेवाओं के लिए सब अपने को तैयार करेंगे। तो बाबा ने ये सब काम दिया, हमने आपको 2 काम और दिए थे, आप सब कर रहे होंगे। यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए रोज 15 मिनट योग और ये संकल्प, शांति वन के वाइब्रेशंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सड़कों पर घूमकर बहुत अच्छे अभ्यास करना। कौन कौन कर रहे हैं? बहुत अच्छा, इतने भाई बहने करेंगे तो अगले सीजन में आने वालों को और डिवाइन अनुभव होंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था, बाबा तो सदा नहीं आएगा ना, बाबा आए भी तो परिस्थिति ऐसी बन जाएंगी कि लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा भी समय आ रहा है जब लाखों लाखों लोग यहाँ की परिक्रमा करने आएंगे, यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाने आएंगे। हमारे कदम जिस मिट्टी पर पड़ेंगे, हमारे यहाँ मिट्टी रही तो नहीं है, पर फर्श पे भी जहाँ पड़ेंगे क्या होगा, वहाँ प्योर वाइब्रेशंस भर जाएंगे उन चीजों में। ये जो पेड़ पौधे हमारे चारों ओर हैं सड़कों पर, इनमें प्योर वाइब्रेशंस भर जाएंगे। जो भी यहाँ से गुजरेंगे वो सुखों की फीलिंग लेकर जाएंगे। जो और कहीं नहीं होता संसार में, वो हमारे पास सोना है। दुखी आएंगे, एक चक्कर लगाते सुखी होकर बाहर निकलेंगे। टेंशन में आएंगे, बिल्कुल टेंशन रिलीज हो जाएगी। बहुत समस्याओं में आएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, लगेगा समस्या हर ली गई। इस महान कार्य के लिए हम सबको ये वाइब्रेशंस पावरफुल बना के रखने हैं। बहुत अच्छा, आप सब इस कार्य में आगे बढ़े हुए हैं। याद रखना है, हमारा एक एक सेकंड और एक एक संकल्प क्या है, महान है, पूरे 84 जन्मों को इफेक्ट करने वाला है। तो अपने पुरुषार्थ की गति को तेज रखना है, किसी की धीमी हो गई हो फिर से उसको तेज कर दें, और अपने को तैयार करें आने वाले महान कार्यों के लिए। जब इस संसार में हाहाकार हो जाएगा, जब इस संसार में कोई किसी को अपना दिखाई नहीं देगा, तब हमारे वाइब्रेशंस उन्हें सच्चा सहारा देंगे। तो सभी बहुत उमंग से, जरा भी ढिलाई आई हो उसको फिर से चुस्त कर लें। 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है सभी को, बहुत अच्छा। फरिश्ता सो देवता का अभ्यास करना है, ज्वालामुखी योग का बहुत अभ्यास करना है, व्यर्थ से मुक्त रहने पर पूरा अटेंशन देना है। इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है ड्रामा का ज्ञान। अगली बार याद रखेंगे, मुझे याद दिलाना, ड्रामा की 10 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो ड्रामा के ज्ञान के द्वारा हम अपने चित्त को शांत रखें, व्यर्थ को समाप्त करें। चलो सभी, ज्वालामुखी योग।